पहाड़ और मेरा जीवन किस 24 पहाड़ी भात दाल और काले बिस्कुट यानी मड़वे की रोटी को याद करते हुए। जिसने पहाड़ में रहकर कभी चूल्हे में तांबे के गुड़तोलों में बना भात दाल न खाया वो पहाड़ में क्या रहा। मुझे उस भात दाल का स्वाद आज भी याद है और आज भी अगर मेरे सम्मुख एक प्लेट पर 5 सितारा होटल में बना सुगंधित भोजन रखा जाए और एक तरफ वही गुड़तोलों में बना खालिस भात और उड़द की दाल, साथ में पोली हुई या तली हुई लाल मिर्च, तो सहज ही मेरा हाथ भात दाल की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि आज वही हमें मयसर नहीं। मेरी याददाश्त में पहाड़ी दाल भात के स्वाद की जो सबसे पहली घटना है वह बहुत बचपन की है। मैं किस उपलक्ष में किसके घर के अहाते में बैठा था मुझे याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि वहाँ गांव के लोग कतार में बैठे हुए थे और गांव के लोग ही बड़ी बड़ी बाल्टियों में दाल सब्जी भर भर कर बाँट रहे थे। भात के बड़े बड़े डल्ले सामने रखे मालू के बड़े पत्ते पर डाल दिए जाते, पीछे से दूसरा बंदा उसमें दाल डाल देता। मुझे याद है कई बार आलू या कद्दू की अतिरिक्त सब्जी भी बनती थी। उस भात दाल में जादुई ताकत होती रहा करती होगी, क्योंकि उसे खाने के बाद तृप्ति का जबरदस्त एहसास पूरे वजूद पर तारी हो जाता। ठुलीगाड़ में रहते हुए माँ गुड़तोलों का इस्तेमाल तो नहीं करती थी, पर भात दाल बनता चूल्हे पर ही था और बर्तन भी पहाड़ी ही हुआ करते थे। दाल शायद लोहे की कढ़ाई में बनती थी और भी स्वादिष्ट। एक बार यूँ हुआ कि आर्मी अफसर के पुत्र और मेरे सहपाठी संजू वटके को किसी काम से मेरे घर आना पड़ा। वहाँ उसने मेरे साथ ही घर पर बना भात दाल खाया। यह एक सामान्य बात थी कि घर में आए मेरे किसी दोस्त ने इस तरह खाना खाया हो। उन दिनों आजकल की तरह चम्मच कटोरे से माप कर भात दाल नहीं बनता था घरों में। भोजन इतना बनता था कि 2-4 लोग ज़्यादा खा ही सकते थे। संजू वटके ने भात दाल खाने के बाद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन स्कूल में जैसे ही रिसेस यानी भोजनावकाश हुआ उसने फरमाइश की कि आज भी हम मेरे घर पर जाकर भात दाल का भोजन करें। भात दाल पर उसका विशेष जोर था, लेकिन हमारे घर में रोज़ भात दाल नहीं बनता था। किसी दिन भट्टिया भी बन जाता, भटकी चुड़गानी भी आए दिन बनती रहती थी, चावल की मैरी जो खट्टी दही डाल के बनाते थे शायद मैरी भी बनती थी। इन सभी में जब घर में पाली जा रही गाय का विशुद्ध घी पड़ता तो खुशबू से ही पेट भर जाया करता था। संजू वटके को यूं अपने घर ले जाने में मेरे मन में थोड़ी हिचक उठ रही थी। वह आर्मी अफसर का बेटा था और उन दिनों मेरे पिताजी लंबी बेरोजगारी के बाद CISF में दोबारा नौकरी करने लगे थे। झूठ बोले कुत्ता काटे, मन में कहीं गहरे एक गैर बराबरी का एहसास तो था ही, लेकिन मैं उसे फिर भी घर ले गया और उसकी किस्मत देखिए कि उस दिन घर पर भात दाल बना था, लेकिन उस दिन साथ में मड़वे की रोटी भी बनी थी जिस पर घी लगाकर चूल्हे पर कुछ कड़क बना हरे नमक और घर में बनाए मक्खन के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और हुआ करता था। संजू वटके ने पहले तो थोड़ा दाल भात खाया, उसके बाद उसने अपना टिफिन खोला जिसमें चॉकलेट और बिस्किट थे, जिन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि इस बिरादरी की चीज़ें मुझे खाने को कभी कभार ही नसीब हो पाती थी और उनकी भी क्वालिटी माशाअल्लाह ऐसी उम्दा तो नहीं रहती थी जैसे संजू के टिफिन में चॉकलेट बिस्किट की दिख रही थी। मन में जैसे ही उस टिफिन की चीज़ों के प्रति लालसा पैदा हुई, वैसे ही दिमाग में भी एक आइडिया कौंध पड़ा। मुझे ख्याल आया कि संजू वटके आर्मी अफसर का बेटा है, शहरी बाशिंदा है जिसे पहाड़ी गांव के भोजन के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसीलिए दाल भात खाने के लिए यहाँ दौड़ा आया। इसे मड़वे की रोटी के बारे में क्या पता होगा। मैंने तुरंत मड़वे की रोटी के छोटे टुकड़े किए और उनमें से एक को तरल मक्खन में डुबोकर उसकी ओर बढ़ा दिया। संजू भाई ये लिखा, ये पहाड़ी बिस्कुट है, इसे काला बिस्कुट कहते हैं, मैं तो स्कूल भी यही लेकर आता हूँ। संजू ने वह हरा नमक और मक्खन में डूबा कड़क मड़वे की रोटी का टुकड़ा मुँह में रखा और कुछ देर आँख बंद किए उसे चबाता रहा। वह पहली बार मड़वे की रोटी खा रहा था। इसलिए उसे खुद भी पता न था कि उसे कैसा लगने वाला है। लेकिन जब गाय के शुद्ध मक्खन हरे नमक के साथ मिलाप कर उसमें मड़वे के आटे का सुगंध भरा करारापन मिला, जीभ की स्वाद कोशिकाओं को झंकृत करते हुए मुंह के भीतर घुलना शुरू हुआ होगा। इस वाक्य को दोबारा सुने। लेकिन जब गाय के शुद्ध मक्खन हरे नमक के साथ मिलाप कर और उसके मड़वे के आटे का सुगंध भरा करारापन मिला, जीभ की स्वाद कोशिकाओं को झंकृत करते हुए मुंह के भीतर घुलना शुरू हुआ होगा, संजू वटके को तब हाथ में पकड़े डब्बे में रखी चॉकलेट और बिस्कुट तुच्छ लगे होंगे। मैं इसी कमजोर क्षण की प्रतीक्षा में था। मैंने उसकी ओर मड़वे का दूसरा टुकड़ा बढ़ाया और उसके डब्बे से चॉकलेट का टुकड़ा ले लिया। अब तक उसकी जीभ को घर के मक्खन का स्वाद लग चुका था। उसने उस मड़वे की रोटी के मक्खन में भिगे हुए टुकड़े बहुत चाव से खाए और इस बीच मैंने भी उसके डब्बे में रखी चॉकलेट और बिस्कुट उतने ही चाव से खाए। इधर उसने मड़वे की रोटी खत्म की, इधर मैंने उसकी चॉकलेट और बिस्कुट। सौदा एकदम बराबरी का था। आप में से कुछ लोग यह समझ सकते हैं कि सुंदर अब ज्यादती कर रहा है, अपने बचपन के नाम पर कुछ भी परोस रहा है, पर झूठ बोलूं कुत्ता काटे। आप लोग चाहे तो संजू वटके को खोजकर खुद उससे भी पूछ सकते हो। मैंने तो बहुत कोशिश की उसे खोजने की, पर वो मिला नहीं। अलबत्ता केंद्रीय विद्यालय में 7वीं कक्षा में मेरे साथ पढ़ने वाली एक भी लड़की का कोई पता नहीं। सिर्फ मीना बिस्ट, जो कि कालांतर में डिग्री कॉलेज में भी मेरी सहपाठी हो गई थी, पिथौरागढ़ के दगड़ियों वाले व्हाट्सएप ग्रुप की सक्रिय सदस्य है और वह मेरी इस कहानी को लगातार पढ़ भी रही है। बहरहाल बात संजू वटके की हो रही थी। उसे हमारे घर पर पहाड़ी भात दाल इतना पसंद आया कि लगभग रोज ही भोजनावकाश में मुझसे घर जाने को कहता। एक दो दिन तो ठीक था, पर भोजनावकाश में कक्षा के दूसरे दोस्तों के साथ खेलने की मेरी ज़्यादा दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अपनी जेब में रखे 10-20 रुपये भी मुझे ऑफ़र किए। मैंने लिए या नहीं मुझे याद नहीं, पर यह याद है कि संजू मेरे घर भात दाल खाने कम से कम 3 बार तो ज़रूर आया ही था।